नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जापान की प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनी यामाहा की भारत में सभी मोटरसाइकिलें इस साल के अंत तक E20 ईंधन से चलने लगेंगी। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि देश में 149 सीसी से 155 सीसी तक की सभी मोटरसाइकिलें मानक सुविधा के तौर पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ आएंगी। कंपनी फिलहाल R15M और R15V 4 में TCS सुविधा देती थी और अब FZS, FIV 4 Deluxe, FZX और MT15V 2 में भी ये सुविधा मिलेगी। कंपनी ने कहा कि 2023 में पेश होने वाली बाइक ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली से लैस होंगी, जो इस साल 1 अप्रैल से शुरू हो रहे उत्सर्जन नियमों के तहत अनिवार्य है। E20 ईंधन में गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल होता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यूरोपीय बाजार में पैठ बढ़ाने के मकसद से इस साल जुलाई में G20 देशों के बीच समुद्री खाद्य नियामनों में तालमेल के लिए सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत के पास इस साल के लिए G20 की अध्यक्षता है, जिसका समापन सितंबर में वार्षिक शिखर सम्मेलन में होगा। MPEDA इस साल G20 देशों में झींगा मूल्य श्रृंखला में अंशधारकों को एक साथ लाने के लिए एक झींगा सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। MPEDA के अध्यक्ष DV स्वामी ने कहा, सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य भारत के समुद्री खाद्य उद्योग में विभिन्न अंशधारकों को व्यापार नियमों और यूरोपीय देशों में निर्यात की संभावनाओं से अवगत कराना है, जो हमारे समुद्री उत्पादों के तीसरे सबसे बड़े आयातक हैं। MPEDA ने एक बयान में कहा, चालू वर्ष में G20 देशों सहित समुद्री उत्पादों के शीर्ष 20 बाजारों से राजदूतों को आमंत्रित करने के लिए नई दिल्ली में एक फिश फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कोयला भंडार यानी कोयला सीम से निकाली गई प्राकृतिक गैस की अलग अलग नीलामी कर रही है। इसकी कीमत ब्रेंट क्रूड तेल कीमतों से जुड़ी है। रिलायंस ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थिति ब्लॉक से कोल बैड मीथेन के लिए $12.75 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कीमत मांगी है। वहीं ONGC ने झारखंड के उत्तरी करणपुरा से CBM यानी कोयले की सीमा से निकले मीथेन गैस के $9.35 प्रति यूनिट की दर पर बोली मांगी है। रिलायंस के दस्तावेज के अनुसार कंपनी ने मध्य प्रदेश के CBM ब्लॉक से निकाली गई प्राकृतिक गैस को लेकर 6.5 लाख घन मीटर प्रतिदिन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। ये बोली 1 अप्रैल 2023 से एक साल के लिए मंगाई गई है। वहीं ONGC ने 15,000 घन मीटर गैस की पेशकश की है। भारत की G20 की अध्यक्षता में कृषि उप प्रमुखों की पहली बैठक सोमवार को यहां शुरू हुई। 3 दिन की इस बैठक में जलवायु, स्मार्ट पहल और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मोटे अनाज पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण मोटे अनाज और मूल्य वर्धित उत्पादों के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित स्टॉल रहेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में जलवायु, स्मार्ट पहल, छोटे किसानों के साथ कृषि विपणन सूचना तंत्र द्वारा जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी को अपनाना, गेहूं से संबंधित पहल, कृषि जोखिम प्रबंधन और खाद्यान्न की बर्बादी रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे दिन बैठक में मौजूद रहेंगे। ग्लोबल MBA 2023 रैंकिंग में भारतीय बिजनेस स्कूलों में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शीर्ष पर रहा है। हालांकि इस वैश्विक सूची में ISB इस साल 32वें स्थान से फिसलकर 39वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक रैंकिंग में अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, इंदौर और लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थान को भी जगह मिली है। फाइनेंशियल टाइम्स की ओर से रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल रैंकिंग में IIM अहमदाबाद की स्थिति सुधरी है और वो 2022 के 62वें से 91वें स्थान पर आ गया है। हालांकि जब देश के बिजनेस स्कूलों की बात आती है तो ISB पहले स्थान पर कायम है। वैश्विक स्तर पर बिजनेस स्कूलों में ISB शीर्ष 50 में शामिल एकमात्र भारतीय बिजनेस स्कूल है। एशिया में ये 6ठे स्थान पर है। अलायंस समूह के रिटेल एस्टेट फर्म अर्बनाइज से चेन्नई के ताम्बरम में रिलायंस कैपिटल से 96.5 एकड़ जमीन खरीदी है। फर्म यहां उपनगरीय परियोजना विकसित करने के लिए 3600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बयान में कहा कि वो इस जमीन पर एक बड़ी उपनगरीय परियोजना विकसित करेगी। जमीन पर 1.3 करोड़ वर्ग फुट निर्माण कार्य कर 7000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा सकता है। कंपनी ने हालांकि इस सौदे के वित्तीय लेन देन का ब्यौरा नहीं दिया। अर्बनाइज ने कहा कि वो अपना बाजार फैलाने के लिए बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में रिहायशी स्थानों पर जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। अलायंस समूह और अर्बनाइज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज नाम्बुरु ने कहा कि ताम्बरम चेन्नई के व्यावसायिक सह आवासीय केंद्र के तौर पर तेजी से उभर रहा है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने निजी क्षेत्र के यस बैंक की याचिका पर जी लर्न के अलावा दिवाला कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यस बैंक लिमिटेड का दावा है कि एसएल समूह की कंपनी ने उसका 468.99 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाया है। इसमें से 410.67 करोड़ रुपए मूल राशि और 58.32 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। जी लर्न 2 अगस्त 2021 को यस बैंक का कर्ज चुकाने से चूकी थी। मुंबई एनसीएलटी की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वित्तीय ऋणदाता यस बैंक ने जो आवेदन किया है वो कानून की दृष्टि से पूरी तरह से ठीक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जी लर्न ने कर्ज चुकाने में चूक की है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।